نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير محسن انسانیت اس میں سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روابط کا تذکرہ کر رہے تھے اور پیچھے ہم نے آپ کے ہر نکاح کی حکمت کو دیکھا کس طریقے سے ہر تعلق کے پیچھے اسلام کا فائدہ تھا پھر اس کے بعد ہم اب جو چیز پڑھیں گے وہ کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہوا اور لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو پھر اس کا کیا اثر دکھا اور یہ چیز بھی ہم نے پیچھے دیکھی کہ ہر تحریک اپنے شروع میں کمزور ہوتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ جڑیں پکڑ لیتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پیج نمبر بولیے مل کر 578 یہ دور اس سال سے شروع ہوتا ہے جسے عام الوفود کا عنوان دیا گیا عام کہتے ہیں سال کو وفود وفد سے عام الوفود کیا پتہ چلا وہ سال جس دن بہت سارے وفد مدینہ منورہ میں آئے پہلے ایک آتا تھا تو اللہ اکبر کی آوازیں آتی تھیں اور اب لوگ گروہوں میں آنے لگے کیا پتہ چلا کہ جب کوئی دعوت سچی ہوتی ہے اور ساتھی صبر اور استقلال کے ساتھ جمے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ اس میں برکت بھی دیتا ہے اور لوگوں میں بھی قبولیت شروع ہو جاتی ہے یعنی وہ سال جس میں عرب کے گوشے گوشے سے قبائل نے اپنے وفود مدینہ بھیجے قبول اسلام کے لیے سیاسی اطاعت کا عہد باندھنے کے لیے محض تحقیق و تفتیش اور حالات کو سمجھنے کے لیے ہر طرف اسلام کی پیاس پیدا ہو گئی ایک حرکت اور ایک ہلچل کا آغاز ہو گیا یہ کتنا اچھا لگتا ہے دین کے نام پہ ہلچل اچھی لگتی ہے جمود نہیں اچھا لگتا اور ڈھیلا پن اور سستی اور ریلیکسیشن ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت رک گئی ہے تو ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک اصول بنائیں کہ خود بھی گرم رہیں دوسروں کو بھی گرم رکھیں یہ دور فتح مکہ کے بعد کے 3 سالوں یعنی 8, 9 اور 10 ہجری پر پھیلا ہوا ہے یہ گویا محسن انسانیت کی کاشت کردہ فصل کے برگ و بار لانے کا موسم تھا اس کو ہائی لائٹ کریں کسان جسے بیج ڈالتا ہے اس کو کچھ نہیں دکھتا بلکہ بیج بھی پیسوں کا ہی آتا ہے جو مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے اللہ پہ نظریں لگاتے ہوئے لیکن اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس پہ پھل بھی لگتے ہیں اور پتے بھی لگتے ہیں گو اجمال ہمیں ملحوظ ہے گو اجمال ہمیں ملحوظ کا کیا مطلب ہے کہ ہم بات کو مختصر رکھنا چاہتے ہیں لمبی نہیں کرنا چاہتے لیکن سیرت کا یہ باب اتنا اہم ہے کہ وفود کا تذکرہ سامنے آنا چاہیے کیونکہ وفود کی آمد اور ان کی بات چیت اور ان کے تاثرات میں نہایت ہی مفید اسباق ملتے ہیں پھر یہی بیان اس حقیقت کو واضح کر سکتا ہے کہ کس طرح عوام الناس چاروں طرف سے آ کر اسلام کے قدموں میں گرے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی یہ وقت دکھائے آج کے مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اسلام کی طاقت اور عزت دکھائے اور دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ اسلام سچا مذہب ہے سیرت کی مختلف قدیم کتابوں میں مدینہ آنے والے وفود کی تعداد کم سے کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 104 ملتی ہے ان میں سے چند اہم اور نمایاں وفود کا تذکرہ ہم کریں گے اور اس میں بھی تفصیل صرف 2-4 وفود کی ہوگی عام الوفود سے قبل 5 ہجری ہی میں اکا دکا یعنی 1 یا 2 وفود آنے لگے تھے سو وہیں سے آغاز ہوتا ہے کیا پتہ چلا یہ آپ کے میرے لیے اس میں کیا فائدے کی چیز ہے کہ ایک تو دعائیں مانگے اپنے لیے بھی کہ اللہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسلام کے پودے پہ بہار آ گئی ہماری بھی زندگی میں ہی پودے پہ بہار آئے ہم صرف سسک سسک کے ترس ترس کے نہ دنیا سے چلے جائیں اور دوسرا طریقہ بھی سیکھیے اور صبر بھی دیکھیے کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر رنگ لاتا ہے صبر پہلا وفد جو آیا تھا اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ وفد قبیلہ مزینہ سے تھا یہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور اوپر جا کر اس کا سلسلہ نسب قریش سے مل جاتا تھا مشہور صحابی نعمان بن مقرن اسی قبیلے سے تھے 5 ہجری میں اس قبیلے کے 400 افراد کا عظیم وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام کا پیمان باندھا غالباً مدینہ آنے والا سب سے پہلا نمائندہ وفد یہی تھا مدینہ سے واپسی پر ان کو زادہ راہ کے طور پر کھجوریں دی گئیں کیا پتہ چلا بہت بڑا قبیلہ تھا نسب چونکہ قریش سے ملتا تھا تو ان کو دیکھ کر خوشی بھی ہوئی ہوگی ہم خاندان یا ہم برادری لوگوں کو دیکھ کر پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ 400 لوگ اکٹھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا اور اکٹھے 400 کے 400 نے مسلمان ہو کر कलमा पढ़ा, कितना खूबसूरत मंजर होगा। फिर देखिए पहला नुमाइंदा अवामी वफद, क्या पता चला, रिप्रेजेंट किया था इसने एक आम तौर पे तहरीक को। बाज़ दफ़ा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इस्लाम फैलता है, बाज़ दफ़ा अफरादी सतह पे फैलता है, तो ये आप कह लीजिए कि अफरादी सतह थी। और ये भी पता चलता है कि कोई आए और उसको फिर तोहफे में या रास्ते के लिए खाने के लिए कोई चीज़ दी जाती और अल्लाह के नबी ने उनको खजूरें दी थी। फिर दूसरा वफद था वफद कबीला बनू तमीम का, ये वफद भी इब्तदाई दौर में आया और बड़े करोफर से आया। करोफर क्या होता है? शान व शौकत से। कबीले के बड़े बड़े रूसा, रूसा क्या, रईस की जमा, अकरो बिन हाबिस, ज़बर खान, अमर बिन अल अहतम, नाइम बिन यजीद, उयना बिन हसन फजारी खुद शरीक वफद थे। इस वफद की वजह से खासी रौनक रही। इस वफद के अफराद मस्जिद में दाखिल हुए तो बड़े अखड़ तरीके से हुजरे के करीब आवाज़ दी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आओ। चुनाचे वही इलाही सूरह हुजरात ने इनको शाइस्तगी का दर्स भी दिया, याद आ रही है। ये लोग यूँ तो इस्लाम को दिल दे के ही घरों से चले थे, मगर अभी अरबी मुफाहरत, फ़ख्र जतलाना, अरबी फ़ख्र जतलाने का रंग मिजाजों में बाकी था। उन्होंने ख्वाहिश की कि फरीक़ैन के ख़तीब और शोरा मजमे में फसाहत और मानी अफरीनी के जौहर दिखाएं। दर हकीकत अरब के बाद ऊंचे कबाइल किसी क़्यादत को जब ही कबूल कर सकते थे कि इसकी ज़हनी बरतरी के वो कायल हो जाएं। नबी सल्लम ने भी इस मुखातबत और मुफाहरत की दावत को मसलहत देखकर कबूल कर लिया। अतारत बिन हाजिब बनु तमीम का नामवर खतीब था, इसने अपने कबीले की क़्यादतों, सियादत और दौलत व जाह को तकरीर में पेश किया और कहा कि हमारी हमसरी का जिसे दावा हो वो ऐसे खसाइस और औसाफ़ सामने लाए। वो कहते हैं ना, कोई हमसा हो तो सामने आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से इस्लामी तहरीक के खतीब साबित बिन कैस जवाबी तकरीर के लिए उठे। उन्होंने एक पुरजोर खुतबे में हल्के से रंगे मुफाहरत के पर्दे में दावत का पहलू नुमाया किया और इसी को इस्लामी माशरे का सरमाया इफ्तिखार करार दिया। चंद जुमले असली अरबी में देखिए क्या बांगी है, यानी खूबसूरती कितनी थी उसमें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी समावाति वल अर्दि खलक़हु कदा फ़ीहुन्न अम्रहु ववसिअ कुर्सियहु अलैहि सुम्मा काना मिन क़ुदरतिही इन जालना मलूकन वस्तफ़ा मिन खैरि खल्क़िही रसूलन अक्रमहु नसबन वस्दक़हु हदीसं वफ़दलहु हसबन सुम्मा दान नास इलल ईमानि बिही फ़ामन बि रसूलिल्लाहि अल मुहाजिरून मिन क़ौमिही वज़वी रहमिही अक्रमन नासी हसबा वाख़सनन नासी वजूहा व खैर नासी फ़आला फ़नहन अंसारुल्लाही व ज़रा रसूलिही। कितने खूबसूरत तरीके से उसने आप देखे कि आपकी शान बयान की है। फिर तमीम के मुमताज़ शायर ज़िबर क़ान बिन बदर ने कसीदा पढ़ा, रंग ये था, नहनुल अकराम फलाही युआदिलुना मिनल मलूकी फ़फ़ीना तनसबुल बेह। मतलब के हम अशराफ हैं और कोई कबीला हमारी हमसरी नहीं कर सकता, हम में ताजदार हैं और हम लोग माबद तामीर करते हैं, यानी हम मस्जिदें बनाते हैं, इबादत खाने तामीर करते हैं। इस्लामी तहरीक के इनकलाबी शायर हज़रत हसान मौजूद ना थे, ढूंढ कर लाए गए। नबी सल्लम ने फरमाया, उठो हसान, इस शख्स की शायरी का जवाब पेश करो। इब्ने हशाम ने इनका कसीदा नकल किया। वफद ने एतराफ़ किया कि हमारे ख़तीब और शायर से रसूल खुदा के ख़तीब और शायर बरतर हैं। इस एतराफ़ के बाद तमाम अफराद इस्लाम के साया रहमत में आ गए। इतना आसान क्यों हो गया था? याद रखिए, जब कोई चीज़ फैशन और रिवाज बन जाती है ना, तो उसको इख्तियार करना बहुत आसान होता है। आज भी लंबी कमीज़ों का रिवाज हो और पहले दिन कोई छोटी कमीज़ पहन कर निकले तो बड़ी जुरत करेगा। हाँ, कोई मॉडल हो, कोई इस फ़न के माहिर हो तो लोग शायद उनको पसंद करें, हम जैसा तो बाहर ही ना निकले। मेरे कपड़े ही ठीक नहीं हैं, सब मुझे देखेंगे। अच्छा, वो भी कहते हैं सब मुझे देखें, और इधर आपको डर है मुझे देखेंगे। हाँ, लेकिन जब वो चीज़ आम हो जाती है तो सब पहनते हैं। आज इस्लाम नया नया है, अल इस्लाम उबदउ गरीबन। आपने फरमाया इस्लाम अजनबीयत से शुरू हुआ, यानी लोगों को अजीब लगी थी ये दावत कि इतनों को छोड़कर अब एक के पीछे आ जाएं। और एक वक्त आएगा कि दोबारा इस्लाम गरीब होगा, और आज भी ऐसा ही है। आज अब किसी को इस्लामिक हाल हुलिए या इस्लामिक रंग ढंग में देखें तो लोग उसको अजनबी सोचेंगे। हालांकि जो इस्लामिक लॉस हैं और जो इस्लामिक रियलिटीज़ हैं ना, वो बड़ी यूनिवर्सल है। आज के दौर में आप ये नहीं कह सकते कि आप इस्लाम पर अमल करें तो आप बहुत बैकवर्ड लगेंगे। अखलाक इस्लाम का सबसे प्यारा है, शुरू से आखिर तक है। लेकिन जब कोई चीज़ लोगों की नज़रों में मशहूर होती है ना, फिर बड़े लोग आते हैं, लेकिन वो जो लोग इससे पहले आए होते हैं उनके मुकाम को ये नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तब ना शोहरतें होती हैं पास ना कामयाबियाँ। बिलाल को पता था कि कल इसी मक्का में अल्लाह के नबी फ़तेह बनकर आएंगे, वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने तो हक़ को पहचान कर कुर्बानियाँ दी। ऐसे लोगों का मुकाम फिर बहुत आला होता है। फिर आप देखिए तीसरा वफद है, वफद बनी अब्दुल कैस। ये बड़ा मारूफ वफद था। इलाका बहरीन में दावत इस्लामी का आगाज़ बजरिया मुनकस बिन हब्बान इब्तदाही में हो गया। हल्का असर वसी होने लगा। 5 हिजरी में 13 आदमियों का वफद मदीना आया। नबी सल्लम के पूछने पर उन्होंने जब बताया कि हम ख़ानदान रबिया के अफराद हैं, तो नबी सल्लम ने मरहबा ला खजाया वला नदामा, यानी वेलकम हो तुमको, ना शर्मिंदगी और ना कोई रुसवाई, कहकर इनकी इज्जत अफजाई की। वफद की तरफ से दरख्वास्त की गई कि चूंकि हमारा इलाका ज़्यादा दूर है और रास्ते में कुफार मुजर की आबादी है, इसलिए हम 4 महीनों के अलावा सफ़र नहीं कर सकते, लिहाजा हमें चंद मुतय्यन बातें बता दीजिए जिन पर हम कारबंद रहें, अपने और अपने लोगों को बताएं। यानी अभी जा नहीं रहे तो इससे फ़ायदा उठा लेते हैं और इल्म ले लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद, नमाज, रोज़ा और अदाए खुम्स की तलकीन फरमाई। खुम्स क्या? माले गनीमत का 5वां हिस्सा। और शराब साजी से इज्तनाब के लिए 4 किस्म के मुरव्वज, मुरव्वज जिनका रिवाज था, ज़रूफ़ यानी बर्तन, 4 किस्म के बर्तन जो ख़ास तौर पर शराब के लिए इस्तेमाल होते थे, मसलन दिबा, ख़त्म, नक़ीर, मुस्फ़त का इस्तेमाल ममनू ठहरा दिया। यानी ये बर्तन है ही ऐसे थे कि जिसको शराब के साथ जोड़ दिया गया था। वफद के लोग बहरीन की जाहली सकाफत के मतलब नबी सल्लम की मालूमात सुनकर बड़े हैरान हुए, लेकिन आखिर निज़ाम हयात को ज़ेर व ज़बर कर देने वाली तहरीक का सरबराह कार ज़ेर दावत इलाक़ा, ज़ेर दावत यानी जिन इलाकों में दावत दी जा रही थी, ज़ेर दावत इलाकों के हालात से बेखबर रहकर काम कैसे कर सकता। यानी उनको लगा कि अल्लाह के नबी तो कभी बहरीन गए नहीं, तो ये 4 किस्म के बर्तन ख़ास तौर पर वहाँ होते थे, तो इनको हैरत हुई कि अल्लाह के नबी को कैसे पता चला। तो इसका जवाब दिया गया है कि जिस बंदे ने ज़िंदगी बदलनी है लोगों की, निज़ाम हयात को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करना है, तो उसको तो ऐसे इलाके जहाँ दावत दी जा रही है वहाँ के वाक़यात पता होंगे। आपके मेरे लिए अमल क्या? जहाँ दीन की बात, जिन लोगों में जिस जगह जाएं पहले उनके बारे में जाने वो है कौन। पता चला कि उनको बुखार था और अब नज़ले की गोलियाँ देकर आ गए। आज हमारी दावत ऐसी होती है और फिर बाद में रोते हैं कि रिएक्शन हो गया, फिर बड़ी लड़ाई हुई, फिर मैं आज के बाद दावत नहीं दूंगी। तो हमेशा अपने मदऊईन के बारे में जानते रहिए, दिलचस्पी लीजिए। जितनी आप दिलचस्पी लेंगे अल्लाह आपको उतना इंसान दोस्त भी करेगा और इंसानों को पढ़ने लग जाएंगे आप इंशाल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूमात कुछ तो ज़ाती सफ़रों से माखूज थी, माखूज अखस शुदा। फिर मक्का और मदीना के मरकज़ी मकामात पर गोशे गोशे के लोग आते थे और इनसे बहुत कुछ हालात इल्म में आते थे। याद रखिए जिस बंदे का जितना बिग एक्सपोजर होगा उसकी इल्म और उसकी हिकमत भी उतनी होगी। इंसानों में रहकर, इंसानों से मिलकर, उनके हालात वाक़यात से बंदा किताबों में रहने से ज़्यादा सीखता है। तो हर शख्स आपके साथ आने जाने वाला आपका एक किस्म का उस्ताद बन जाता है। तो अल्लाह के नबी पीपल पर्सन थे। अगर कमरे में बैठे रहते और बैठकर वजीफे करते रहते और कहते नहीं अभी ज़रा मैं अपनी ज़ात तो संवार लूँ फिर दूसरों को करूँगा, सिखाऊँगा, तो ये कभी नहीं हुआ। फिर तो आप जो काम इतने थोड़े अरसे में कर गए ये कभी भी ना पूरा होता। बहरहाल इस वफद में एक शख्सियत जारूद बिन अलाला की भी थी। जारूद मसीही था यानी नसरानी। इसने अर्ज़ किया कि मैं एक मज़हब पर चल रहा हूँ, इसे छोड़कर अगर आपके दीन पर आऊँ तो क्या आप ज़ामिन बनते हैं, यानी कोई उखरवी वबाल तो ना आएगा अपना दीन छोड़ने का मुराद है ये। आपने फरमाया हाँ मैं ज़ामिन हूँ, क्योंकि जिस दीन की तरफ मैं दावत देता हूँ ये तुम्हारे मज़हब से अफसल है। जारूद फ़ौरन मुसलमान हो गया और इसके हम मज़हब साथी भी हलका इस्लामी में दाखिल हो गए। कैसे अलग लोगों के दिल खोल देता है फिर। हम इसी तरह चौथा नुमाइंदा बनु साद बनी बकर, यानी इधर से एक नुमाइंदा आया था। कबीले ने जम्माम बिन सलबा को नुमाइंदा बनाकर भेजा। ये शुतर सवार, शुतर ऊंट, ऊंटों पे सवार, अजीब सादा बदवियाना अंदाज से मसे नबी में आया और असाबे नबी से पूछा तुम में से अब्दुल मुतलब का फरजान यानी औलाद कौन है। लोगों ने नबी सल्लम की तरफ इशारा किया कि वो गोरे चेहरे वाले हैं रसूल खुदा। पास पहुंचा और कहा ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटे कुछ बातें सख्ती से पूछूंगा, बुरा न मनाना। आपने इजाज़त दी, फिर इसने कसम दिला दिला कर दीन की चंद बुनियादी बातों, तौहीद, रिसालत, नमाज, हज, ज़कात वगैरह के बारे में पूछा। क्या आप ऐसा कहते, आप तस्दीक फरमाते के सारे जवाब लेकर कहा, मेरा नाम दम्माम बिन सालबा है, मुझको मेरी कौम ने भेजा है, मैं जाता हूँ, और जो कुछ आपने बताया है ना इसमें ज़रा भी भर इजाफा करूँगा ना कमी, और ऊँट पर सवार होकर रवाना हो गया। इसके जाने के बाद आपने फरमाया, अगर ये सच कहता है तो इसने फलाह पाई। देखिए, सिर्फ़ फ़राइज़ की सतह पे दीन को लेने वाले को आपने खुशखबरी दी, यानी कमी बेशी ना करे दीन में, बस इतना भी दीन रख ले तो कामयाब हो जाएगा। वापस जाकर इसने कौम में तोलानी, तोलानी मीन तूफ़ानी, वापस जाकर इसने कौम में तूफ़ानी अंदाज से दावत दी कि लोगों, में अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया हूँ, लात उज़्ज़ा वगैरह कोई हकीकत नहीं रखते, लोगों ने डराया तुम पर ऐसी बातों की वजह से इन बुतों की मार ना पड़े और जुनून या जुसाम ना हो जाए। दमाम ने कहा, अल्लाह की कसम ये ना नफ़ा पहुँचा सकते हैं ना दरर, शाम होने से पहले पहले सारा कबीला इस्लामी तहरीक में शामिल हो गया। हमारे रिश्तेदार क्यों अभी तक नहीं आ रहे, उनको आना नहीं, क्या वो उनके दिल इनसे भी सख्त है, मक्का वालों से भी सख्त है? और आप देखिए कि अल्लाह के नबी ने झूठ नहीं बोला कि नहीं नहीं सच बोला तो ये आएंगे नहीं। आज हम मसलत पसंद हो जाते हैं, नहीं नहीं फिर लोगों को सच बताएं तो लोग नहीं आते, तो आप झूठ बताएंगे तो आने लगते हैं, जिनको नहीं आना उनको नहीं आना होता। तो इन सारी बातों से सीखने की ज़रूरत है। खुशकिस्मत थे पूरे ख़ानदान के लिए खैर का ज़रिया बने। चलिए अपने लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे मेरे पूरे ख़ानदान की हिदायत का ज़रिया बना दे, और एक एक फ़र्द छोटे बड़े मेल फीमेल का तसव्वुर करके दुआ किया करे कि अल्लाह मुझे इनकी हिदायत का ज़रिया बना। फिर इसके बाद अगला वफद था, वफद अशआरीन यमन से था। यमन का एक मौजस कबीला था, अबू मूसा अल अशरी, इसी के एक फ़र्द थे। इन तक दावत हक मक्की दौर में तुफैल दौसी और महाजरीन हबशा के वास्ते से पहुँच चुकी थी। मुतासरीन में से तीन अशखास हिजरत का अज़्म बांध कर मदीना चले कि नबी से सल्लम से फैज़ान हासिल करें, यानी फ़ायदा उठाएं और तहरीक हक को तावन बहम पहुँचाएँ। बहरी सफ़र था, रास्ते में मुखालिफ हवा चली और जहाज़ हबश के रास्ते से जा लगा। वहाँ से ये लोग हिजरत उला की सआदत पाने वाली इस्लामी जमात से जा मिले। कुछ ज़माना वहाँ रहकर जाफ़र तैयार की रिफाक़त में चंद नौ मुस्लिम हबशियों को भी साथ लेकर ये मदीना को रवाना हुए और फ़तेह खैबर के मौके पर 7 हिजरी बारगाह रिसालत में जा हाजिर हुए। इनके जज्बे बेख्तियार का ये आलम था कि मंजिल मकसूद पर पहुँचे। ये नगमे मुसर्रत ज़ुबानों से उबला पड़ता था। क्या नगमा था उनकी ज़ुबान पर, गदन नलकिल अहबता मोहम्मद व हसबहू, कल हम अपने रफ़ीक़ों से जा मिलेंगे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इनकी जमात से। गदन किसको कहते हैं, टुमारो को, यस्टरडे नहीं, आने वाला कल, और नलकी हम मुलाकात करेंगे, अलहिब्बत हमारे सबसे बड़े महबूब, कौन है वो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हिस्बहु उनकी जमात से। देखिए ना कि एक दिल में तड़प होती है तो ज़ुबान पर लफ्ज़ भी फिर वैसे ही आने लग जाते हैं ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई तो अहबाब से कहा, तुम्हारे यहाँ यमन से कुछ लोग आते हैं, ख्याल रहे कि ये लोग बहुत रकीकुल कल्ब यानी नरम दिल वाक़े होते हैं। फिर फरमाया, ईमान है तो यमन का, हिकमत है तो यमन की। फिर मुलाकात हुई, बातें हुई, सवालात सामने आए, जवाबात दिए गए और मदीना की फ़िज़ा में एक नया रंग छा गया। वही ज़ुबान है जिधर से ला इलाहा इल्लल्लाह सुनकर आगे से पत्थर पड़ते थे और मक्कालों के दिल पत्थर बने हुए थे, आज उसी ज़ुबान से ऐसे लगता है जो बात निकलती है दिलों में जाती है। अल्लाह ये वक्त दिखाता कब है जब कुर्बानियाँ और हिजरतें पूरी हो जाती हैं। देखिए, दवा खाते हैं ना, कुछ वक्त लगता है, अभी दवा खा रहे हो बीमारी रहती है, ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ अभी तकलीफ़ है, जब सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है सेहत शुरू होती है। दावत और तबलीग, इल्म और तदरीस का काम, इसमें तन मन धन लगा दीजिए, कच्चे झड़े कच्चे आधे अधूरे रहेंगे, पूरी लज्जत नहीं पा सकेंगे इस काम की। अल्लाह के नबी का ये दौर आपको मुझे भी तसल्ली दिलाता है कि एक वक्त आएगा इंशाल्लाह हमारे सारे प्यारे, हमारे रिश्तेदार, हमारे इर्द गिर्द के लोग कुरान और इस्लाम की सच्चाई को समझेंगे, और अल्लाह करे कि दुनिया में जहाँ जहाँ हम हों हमारे इर्द गिर्द से कुफर और फिस्क का खात्मा हो जाए। फिर अगला वफद था, वफद दौस यमन से थे। ये तुफैल दौसी मक्का के इब्तदाई दौरे दावत में इस्लाम लाए थे। उन्होंने जाते ही ज़ोर और शोर से काम किया। ये नोट करें, एक बंदा आता है और अपनी बस्ती में काम शुरू कर देता है, बस बीज डल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके वालिद और बीवी तो फौरन इनके साथ हो गए, कुछ दूसरे अफराद भी मुतासिर हुए, मगर कबीला बड़े भारी अखलाकी इन्हितात में पड़ गया। क्या मतलब, अखलाक ख़राब हो चुका था और बदकारी फैल गई थी। ऐसे हालात में इनकी तुंदिये मिजाज और जोशीलेपन की वजह से काम आगे न बढ़ सका। ये नबी सल्लम से आकर मिले और कौम की शिकायत करके दिल की तमन्ना की। आपने इनको नरम अंदाज़े दावत की तलकीन की और दौस की इसलाह के लिए अल्लाह से दुआ की। अब जो तुफैल ने जाकर काम शुरू किया तो रास्ते खुलते गए और 5 हिजरी में बहुत से घरों में इस्लाम की शुआएं दाखिल हो गईं। यहाँ तक कि 7 हिजरी में 80 खानदान हिजरत करके मदीना आए और इन्हीं महाजरीन में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसी गिरां कदर शख्सियत भी थी। क्या पता चला? नरमी से बात, इसलाह, रास्ते खुलते गए, दुआएं लेनी चाहिए। जहाँ आपको लगे कुछ रुक गया काम, दुआएं लीजिए बस। फिर दुआओं से वो काम हो जाता है जो बाज़ दफ़ा हमारी कोशिशों से भी नहीं होता। फिर इसी तरह 7वां वफद था, वफद सदा। सदा किसको कहते हैं? वैसे तो आवाज़ के लिए आते हैं ना, लेकिन ये एक निस्बत है। कैसे, किसकी तरफ? इस कबीले में पहले पहल ज़ियाद बिन हारिस सदाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। फिर इसने जाकर कुछ असर डाला। 8 हिजरी में 15 आदमियों का एक वफद पूरे कबीले का नुमाइंदा बनकर हाजिर हुआ। साद बिन उबादा इनके मेज़बान थे। उन्होंने खाने के अलावा इनके कपड़ों का इंतज़ाम भी किया। इन लोगों ने नबी सल्लम के हाथ पर इस्लामी तहरीक में शिरकत की बैत बांधी और कबीले की तरफ से भी तआवुन की पेशकश की। इस वफद के वापस जाने पर काम तेज़ी से हुआ। हज्जतुल विदा के मौके पर इस कबीले के 100 अफराद मक्का पहुँचे। फतेह मक्का से कबल के दौर में यही वफूद ऐसे सामने आते हैं कि जिनका तذکرہ तारीख में महफूज है। फतेह मक्का के बाद तो गोया एक अवामी सैलाब था जो हर तरफ से इस्लाम का साथ देने के लिए उमड़ पड़ा। 9 हिजरी और 10 हिजरी में कसीर तादाद में वफूद मदीना पहुँचे और इनका मुख्तसर तذکرہ। पहला है इनमें से वफद सकीफ़, ताइफ से जाए थे। नबी सल्लम जब फतेह मक्का के सफ़र से वापस हुए तो उरवा बिन मसूद सकफ़ी हाजिर होकर हलका इस्लामी में दाखिल हुए और बनू सकीफ़ में दावत फैलाने का इरादा जाहिर किया। नबी सल्लम ने सकीफ़ के किब्र व गुरूर के पेश नज़र एहतियात का मशवरा दिया और अंदेशा जाहिर किया कि वो लोग तुम्हें कत्ल ना करें। हज़रत उरवा को अपने असर व रसूख पर बड़ा एतमाद था, लिहाजा बाइसरार काम करने की इजाज़त ली। वापस जाते ही मकान की छत पर खड़े होकर इस्लाम की पुकार बुलंद की। इनकी तवक्को के ख़िलाफ़ हर तरफ से नाउक अंदाजी शुरू हो गई। तीर फेंकने लगे और एक तीर खाकर वो शहीद हो गए। बनु सकीफ़ करने को तो ये हरकत कर बैठे, मगर इस ज़ालिमाना इकदाम ने इनके ज़मीरों में हरकत भी पैदा कर दी। वो मामले को ठंडे दिल से सोचने पर मजबूर हो गए। महीना भर बाद उन्होंने एक इज्तमा किया जिसमें सूरत हाल का हकीकत पसंदाना जायज़ा लेकर इस सवाल पर गौर किया गया, क्या हम लोग पूरे अरब का मुकाबला कर सकते हैं जो इस्लाम के ज़ेरे नगीं हो चुका है। बिलाखिर तय पाया कि मदीना में किसी नुमाइंदे को भेजा जाए। बाद में पूरा वफद तैयार किया गया। उस्मान बिन अबिलास, औस बिन औफ और बहर बिन खर्शा बनी मालिक में से थे। हकम इब्ने अमर बिन वहब और शरखबील इब्ने गैलान हलीफ कबीलों की तरफ से वफद में शरीक हुए। ये लफ्ज़ ना अब्दिया है, बेसिकली अब्दिया लैल। सरदार ताइफ इनको लेकर मदीना गया। ये वही दिया लईल है जिसने 12 साल कबल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सुनने से इनकार कर दिया और ओबाशों को पीछे लगा दिया। पीछे आपने ये नाम पढ़ा है आपके सफरे ताइफ में। तबूक से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी पर यह वफद मदीना पहुँचा। इनके लिए मस्जिद से मिला हुआ यानी मुत्तसिल खैमा नसब किया गया। खालिद बिन सईद बिन अलास फरीकैन के दरमियान जरिए गुफ्तगु बने। इन लोगों ने अजीब अजीब शर्तें पेश की। एक शर्त ये थी कि 3 बरस तक इनका बुत लात गिराया ना जाए यानी मुनहदिम ना किया जाए। फिर इस मुद्दत को घटाते घटाते 1 महीने तक लाए। ये बुत जिस जामद जहनीत का मसर था वो अंदर से मान नहीं रही थी। उन्होंने ये अंदेशा पिन्हा जाहिर किया यानी छुपा हुआ ये उनका डाउट था, अंदेशा था कि हमारे बुतों को अगर कहीं मालूम हो गया कि इनको तोड़ा जाने वाला है तो मुमकिन है कि वो तमाम बाशिंदों का खात्मा कर दें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ये सुन रहे थे, इनसे चुप न रहा गया। अब्दिया लईल को मुखातिब करके कहा, कैसी जहालत की बातें कर रहे हो, तुम्हारे ये माबूद तो महज पत्थर हैं। अब्दिया लईल ने भुना कर कहा, इब्ने ख़त्ताब, हम तुमसे बात करने नहीं आए, हमारा मामला रसूलुल्लाह से है। बहरहाल आप नबी सल्लम ने ये शर्त जब किसी कीमत पर कबूल ना की तो वो इस पर राज़ी हो गए और इन्हदाम यानी गिराने की कार्रवाई हमसे ना कराई जाए बल्कि आप अपने आदमी भेजें। चुनांचे अबू सुफियान बिन हर्ब और मग़ीरा बिन शोबा को नामज़द किया गया। फिर उन्होंने कहा, हमें नमाज अदा करने से मुस्तस्ना रखा जाए यानी एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। आपने फरमाया, जिस दीन में नमाज नहीं इसमें कोई भलाई नहीं। क्या ख्याल है आज के दौर में, कितने मुसलमान हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ते, तो फिर दीन कैसा होगा। ایک رکنِ وفد نے یہ بھی درخواست کی کہ رسول خدا ہمیں زنا کی اجازت دیجیے، اس کے بغیر تو ہمارے لیے کوئی چارہ کار ہی نہیں۔ یہاں سے دیکھیں اس دور میں کیا اخلاقی گراوٹ تھی۔ پھر وہ کہنے لگے، اچھا ہمارے لیے سود کی لین دین کی تو گنجائش چھوڑیے، اس طرح شراب پینے کی چھوٹ مانگی۔ یہ انداز ایسا تھا گویا کہ رسول اللہ نے کوئی دکان لگا رکھی ہے جس میں سے ہر ایک اپنی اپنی پسند کا سودا خرید سکتا ہے کہ جو چیز چاہے چھوڑے اور جو چیز چاہے لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مطالبوں کے جواب میں قرآن کی آیات پڑھ کر بتاتے گئے کہ یہ تو خدائی ضابطہ ہے، نہ کسی کا من گھڑت۔ جب یہ فضول شرائط مسترد ہو گئیں یعنی رد کر دی گئیں، تو پھر اہل وفد مشورہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر ہم اسلام کے مطالبات نہیں مانتے تو ہمارا حشر بھی ایک دن مکہ والوں کا سا ہوگا۔ مجبوراً سر اطاعت خم کیا اور معاہدہ لکھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو باتوں میں ان کو ڈھیل دے دی، یعنی کچھ مدت کے لیے ان سے زکوٰۃ کی وصولی نہ کی جائے اور ان کو جہاد میں شرکت پر مجبور نہ کیا جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقع کے مطابق جب اسلام نے دلوں میں گھر کر لیا تو یہ تقاضے از خود پورے ہونے لگے۔ وفد میں ایک مخلص نوجوان عثمان بن ابی العاص شریک تھے۔ یہ فارغ اوقات میں اسلام کی حقیقت، شریعت کے احکام اور نظام اسلامی کے تقاضوں کا علم حاصل کرتے۔ انہی کو امیر مقرر کیا گیا۔ یہ لوگ جب واپس پہنچے تو پہلے تو انہوں نے ڈرامائی طریقے سے مخالفانہ تاثر بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناقابل قبول شرطیں پیش کی ہیں، لہذا جنگ کی تیاری کرو۔ دو روز تک خاصی جوشیلی فضا قائم رہی۔ آخر کار لوگ خود ہی کہنے لگے کہ بھلا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا لڑیں گے جبکہ سارا عرب اس کی اطاعت کر رہا ہے، جو کچھ وہ کہے اسے قبول کرو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے نا، جب لوگوں میں قبولیت ہوتی ہے تو پھر دل بھی مائل ہو جاتے ہیں، ڈر بھی لگتا ہے پھر لوگوں کو مخالفت کرتے ہوئے۔ یوں فضا تیار کر کے اہل وفد نے پھر اپنا حقیقی تاثر بیان کیا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی، وفا، رحم اور صدق میں بہت اونچا پایا اور ہمارا سفر بہت ہی بابرکت رہا۔ تو آپ کا کردار جیتا نا، اسی کی گواہی دے رہے ہیں وہ لوگ۔ بتوں کے گرانے کے لیے ابو سفیان بن حرف، مغیرہ بن شعبہ بھی وفد کے ساتھ ہی روانہ ہوئے۔ ان حضرات نے جب کاروائی شروع کی تو عورتوں اور بچوں کا یہ ہجوم دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گیا کہ ان پر کیا گزرتی ہے۔ بعض عورتیں ڈر کے مارے رو رہی تھیں، ان کا خیال تھا کہ زمین و آسمان کا نظام نہ ٹوٹ جائے۔ دیکھیے عقیدہ اتنی مضبوط چیز ہے، بندے کی مت ماری جاتی ہے، خوف اتنا ہے کہ پتہ نہیں ان کو ہم گرائیں گے تو زمین و آسمان ہی پھٹ جائیں گے۔ انہوں نے شعر گا گا کر بیان بھی کیے کہ لوگوں پر رو کہ ان بزدلوں نے اپنے بت دشمنوں کے حوالے کر دیے اور آڑے نہ آ سکے۔ وہی طائف جو ایک دن دائیے حق پر پتھر پھینک رہا تھا، کب؟ جب آپ ہجرت کر کے گئے۔ آج اسی کے اشارے سے ان کا جاہلی نظام خود ان کی آنکھوں کے سامنے مسمار کیا جا رہا تھا۔ صبر کیا نا، اگر آپ اسی دن توڑ آتے ان کے بت تو کتنی بڑی لڑائی لگتی۔ دیکھیے کہ طائف عرب کے جاہلی نظام کے خاصا گھڑ تھا، اور آپ نے محاصرہ کرنے کے بعد محض اس خیال سے چھوڑ دیا تھا کہ اسلام کے ملگیر ماحول کے اندر اب بنو ثقیف اپنا الگ جزیرہ بنا کے تو رہ نہیں سکتے، لہذا خون ریزی کیوں ہو۔ مکہ اگر نظام حق کے آگے سرنگو ہو گیا تو طائف جو مکہ کے تابع رہا ہے اس کی گردن کب تک اکڑی رہ سکتی ہے؟ اگر کوئی جنگ پسند فاتح ہوتا تو ایک بار فوج کشی کرنے اور طائف کا محاصرے میں لینے کے بعد کم سے کم اپنے وقار ہی کی خاطر مارکے کی تکمیل کرتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ قوت کا استعمال بجز ناگزیر یعنی جہاں سے گزارا ہی نہ ہو صورتوں کے ناپسندیدہ تھا، اس لیے محاصرہ اٹھا لیا اور مہم نامکمل چھوڑ دی۔ مقصود یہی تھا کہ بعد میں جب ثقیف حالات کا ٹھنڈے دل سے مطالعہ کریں گے تو رغبت سے اطاعت کا راستہ اختیار کر لیں گے، اور ایک تعمیری اصلاحی انقلاب کے لیے یہی صورت زیادہ مفید ہو سکتی ہے، اور بعد میں یہی ہوا۔ آپ کو کوئی گائیڈ لائن مل رہی ہے اپنے ارد گرد والوں کے لیے؟ ابھی ہم نے پورے نہیں جیتے، ابھی ہمارا اپنا عمل پورا ہی نہیں ہوا۔ جتنا آپ کا اپنا عمل پورا ہوتا جائے گا اتنا لوگ آپ کی بات کے آگے جھکیں گے۔ سچ ہمیشہ اپنی طرف لے کے آتا ہے، سچ میں بہت رغبت ہوتی ہے، ہم بہت جلدی کرتے ہیں اصل میں۔ تھوڑا سا کسی کے ساتھ احسان کر کے کہتے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، یہ ایسے ہی ہیں، یہ بیکار ہیں، یہ وہ ہیں، دس اینڈ دیٹ۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں پہ ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، میرے اپنے اندر یہ سارا معاملہ کیسے چل رہا ہے۔ جی یعنی ضروری نہیں گرا فوراً کھل جائے، تھوڑا سا ٹائم دیجئے، جہاں بھی آپ کو لگتا ہے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی ایسے لوگوں کے لیے تڑپتے تھے، آپ تڑپیے۔ ہمارے اندر ابھی تڑپ کوئی نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے، اور ہم جا کے بغیر تڑپ کے اگلے کو دعوت دیتے ہیں۔ اگلا کہتا ہے تم کون ہوتے ہو، ہم تمہیں دیکھتے ہیں، ہمیں تمہارے حالات پتہ ہے، تم کیا تھی، تم کیا ہو، سب پتہ۔ تو پھر ہم شرمندہ ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔